जानवी के वहां आते ही दीक्षांत और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। उसने माही के हाथ को वापस छोड़ दिया। जानवी ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, आई थिंक मुझे आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन आप दोनों की ये अजीब सी शक्ल देखकर मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। मैं तो चाहती हूँ पॉपकॉर्न के साथ एंजॉय करूँ। माही ने रोनी सूरत थमाकर जानवी की तरफ देखा। जानवी उसके पास गई और फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मैं तो हमेशा चाहती थी कि हम दोनों की शादी एक ही घर में होनी चाहिए, फिर हम दोनों देवरानी जेठानी बनेंगी, कितना मज़ा आएगा। और मुझे नहीं पता था कि भगवान मेरी इतनी जल्दी सुनने वाले हैं। दीक्षांत ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, भाभी जान, आप सीधा शादी पर क्यों पहुंच गई हैं? मुझे माही से शादी की बात नहीं करनी है, फिलहाल तो बस इसके लिए मनाना है कि वो यहीं रह जाए। जानवी ने अपने मन ही मन कहा कि इंसान अपना बेड़ा गर्क खुद करेगा। माही ने जानवी की तरफ देखकर अफसोस भरे लहजे में कहा, देखा, ये तो हाँ तक नहीं कर रहे हैं कि पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रह भी पाएंगे या नहीं, और तुम कहती हो कि मैं यहाँ रहने के लिए हाँ बोल दूँ। सीरियसली, क्या पता बीच में ही मूड चेंज हो जाए और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर ही निकाल दे, फिर कहाँ जाऊँगी मैं? दीक्षांत ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। जानवी ने दीक्षांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वो गलत नहीं समझ रही है, आप बोल ही गलत रहे हो। अभी के अभी सॉरी बोलकर कहो कि हाँ आप उससे शादी करोगे और पूरी ज़िंदगी उसको अपने पास रखोगे। जानवी के वहां आते ही दीक्षांत और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। उसने माही के हाथ को वापस छोड़ दिया। जानवी ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, आई थिंक मुझे आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन आप दोनों की ये अजीब सी शक्ल देखकर मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। मैं तो चाहती हूँ पॉपकॉर्न के साथ एंजॉय करूँ। माही ने रोनी सूरत थमाकर जानवी की तरफ देखा। जानवी उसके पास गई और फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मैं तो हमेशा चाहती थी कि हम दोनों की शादी एक ही घर में होनी चाहिए, फिर हम दोनों देवरानी जेठानी बनेंगी, कितना मज़ा आएगा। और मुझे नहीं पता था कि भगवान मेरी इतनी जल्दी सुनने वाले हैं। दीक्षांत ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, भाभी जान, आप सीधा शादी पर क्यों पहुंच गई हैं? मुझे माही से शादी की बात नहीं करनी है, फिलहाल तो बस इसके लिए मनाना है कि वो यहीं रह जाए। जानवी ने अपने मन ही मन कहा कि इंसान अपना बेड़ा गर्क खुद करेगा। माही ने जानवी की तरफ देखकर अफसोस भरे लहजे में कहा, देखा, ये तो हाँ तक नहीं कर रहे हैं कि पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रह भी पाएंगे या नहीं, और तुम कहती हो कि मैं यहाँ रहने के लिए हाँ बोल दूँ। सीरियसली, क्या पता बीच में ही मूड चेंज हो जाए और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर ही निकाल दे, फिर कहाँ जाऊँगी मैं? दीक्षांत ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। जानवी ने दीक्षांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वो गलत नहीं समझ रही है, आप बोल ही गलत रहे हो। अभी के अभी सॉरी बोलकर कहो कि हाँ आप उससे शादी करोगे और पूरी ज़िंदगी उसको अपने पास रखोगे। फिर उसने माही की तरफ देखकर कहा, वो क्या है ना, दीक्षांत दिमाग से थोड़े बच्चे ही हैं, अभी तो तुम्हें समझना होगा कि उनकी हर बात का गलत मतलब नहीं निकलता है। माही ने भरे गले से कहा, जानवी तू तो मेरी दोस्त है ना, फिर उसकी साइड क्यों ले रही है? तूने देखा नहीं मुझे कितना परेशान किया है? ओहो, आई रिमेम्बर, तुम्हारे सामने तो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया था, जैसे सच में मैं इनकी मेहमान हूँ, और उसके बाद मुझे इतना दर्द दिया था ना, अभी याद करके भी मेरा कलेजा फट जाता है। दीक्षांत की आंखों में पानी आ चुका था, क्योंकि वो जितना एक्सप्लेन कर सकता था उसने कर दिया था, अब उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। जानवी भी हैरानी से अब उन दोनों से अलग होकर माही की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि दीक्षांत ने माही को तकलीफ दी है। उसके हिसाब से तो दीक्षांत बहुत अच्छा लड़का है, क्योंकि वो उसकी भाभी है, उसके बावजूद उसकी कितनी केयर करता है, फिर जिस लड़की को वो पसंद करता है उसे तो पलकों पर बिठाकर रखता होगा। माही ने वापस दीक्षांत की तरफ देखा तो इस बार उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि दीक्षांत इस वक्त उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। उसका सर झुका हुआ था और उसके दोनों हाथ उसके घुटनों पर थे। दीक्षांत ने सुबकते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझे अंदाज़ा नहीं था उस वक्त कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ और मुझे नहीं करना चाहिए। आई एम रियली सॉरी, हो सके तो मुझे एक मौका दे दो, मैं सब कुछ सुधार दूंगा और कभी तुम्हें उस तकलीफ़ से नहीं गुजरने दूंगा। जानवी ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, माही, मुझे नहीं लगता तुम्हें दीक्षांत से अच्छा लड़का मिल सकता है। मेरी कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी, इसलिए मैं जा रही हूँ कॉफ़ी लेकर दादू के पास। आखिर उन्हें भी तो गुड न्यूज़ देनी है, उनका बेटा शादी करने के लिए जो रेडी हो चुका है। इतना बोलते हुए जानवी ने उस ट्रे में से एक कप कॉफ़ी का उठाया और फिर तेज़ कदमों से कमरे से बाहर चली गई। वहीं माही ने कुछ पल दीक्षांत को इस तरीके से देखा और फिर खुद भी उसके सामने बैठते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर अपनी आंखों के सामने किया और फिर धीरे से उसकी आंखों के कोने पोंछते हुए बोली, ठीक है, मैं आपकी माफ़ी को एक्सेप्ट करती हूँ और मुझे अब अपनी फैमिली के बारे में भी आपको बताना है। मेरी मदर नहीं है और मेरे पापा अमेरिका में रहते हैं अपनी नई फैमिली के साथ। उनको मैं याद तक नहीं हूँ, बस कभी कभार फ़ोन कर देते हैं जब उनको मुझे कोई काम होता है, क्योंकि जिस कंपनी में मैं पहले काम करती थी वो जब मुझे पापा ने दिलवाई थी, मैं उनके एहसानों तले दबी हुई थी। इस वजह से जो मुझे बोल रहे थे मैं कर रही थी, पर अब मेरा उनसे कॉन्टैक्ट पूरी तरह छूट चुका है तो फैमिली के नाम पर मेरे पास भी कुछ नहीं है। दीक्षांत ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए माही को देखा। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं, पर माथे की नसें तनी हुई थीं। वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, पर यह गुस्सा किसी और के लिए नहीं बल्कि उसके खुद के लिए था। दीक्षांत ने अपने गालों पर रखे माही के हाथों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए रोते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें फैमिली के नाम पर भी हर्ट कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पापा बुरे इंसान हैं। माही ने फीकी सी स्माइल के साथ कहा, वो बुरे नहीं हैं, पर उन्हें मेरा ख्याल नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी के बजाय अपनी खुशहाल जिंदगी को चुना है, अपने पार्टनर को चुना है जिसके साथ वो हमेशा से रहना चाहते थे। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है और ना ही मुझे उनके पास जाना है। दीक्षांत के आंसू अब लगातार माही के हाथों पर गिर रहे थे, जिससे परेशान होते हुए माही ने अपने सर को दीक्षांत के सर से जोड़ते हुए आंखें बंद करके कहा, अब तो लड़कियों से भी ज्यादा रोते हैं। पहले मुझे लगता था मेरी जिंदगी में जानवी ही वो शख्स है जो रो रोकर नदियां बह सकती है, पर लगता है आप भी उसे कड़ा कॉम्पिटिशन दे सकते हैं इस मामले में। ये सुनकर दीक्षांत रोते रोते भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसके बाद वो थोड़ा हिचकिचाते हुए माही की कमर पर अपने हाथ रखकर उसे अपने करीब करने की कोशिश कर रहा था। उसकी इन हरकतों को समझकर माही ने आगे बढ़ते हुए उसे अपने गले से लगा लिया, जिसके साथ ही दीक्षांत ने एक सुकून भरी सांस ली, लेकिन उसकी आंखों के आंसू अभी भी बंद नहीं हुए थे। माही ने धीरे धीरे उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप किसी और के लिए ये सब कर रहे थे। इस दुनिया में जहां खून के रिश्ते तक नहीं निभाए जाते हैं, वहां आप सिर्फ दोस्ती का रिश्ता भी इतनी शिद्दत से निभा रहे थे, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है कि आप मेरे साथ भी बहुत ज्यादा लॉयल रहेंगे। दीक्षांत को हैरानी हो रही थी कि उसकी हर नेगेटिव बात में ये लड़की कैसे पॉजिटिव सेंस ढूंढ पा रही है और उसको इतनी जल्दी माफ भी कर रही है। दीक्षांत ने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाते हुए कहा, पहले प्रॉमिस तो करो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। माही ने धीरे से कहा, प्रॉमिस, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी।